ओम शांति। आज का विषय है पांच तत्वों की पालना कैसे करें। उसमें बाबा ने हमें आत्मा का ज्ञान दिया है, लेकिन पांच तत्व मानव शरीर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पांच तत्वों का शरीर और सात चक्रों से जुड़ा हुआ हमारा शरीर है। हम पांच तत्वों की बातें करेंगे, चक्रों की बात तो बाबा ने हमें बताई नहीं है। पांच तत्वों में सबसे पहला है जो शरीर बनता है, मिट्टी। मिट्टी माने धरती, उसमें जो शरीर बनता है वो कठोर चीजों से बनता है, और उसमें हड्डियां, दांत, मांस, त्वचा, बाल, नाक आदि का बनता है। फिर है अग्नि। अंगों के निर्माण के अर्थ अग्नि भी जरूरी है, जो गर्म और तीव्र प्रकृति के है। उसमें दृष्टि, नजर, शरीर की उष्मा, तापमान, रंग, चमक, क्रोध, साहस। तीसरा है जल। जल किस अंगों का निर्माण करता है, जो मुलायम, ठंडी और चिकनी होते हैं, जैसे रक्त, मांसपेशियां, कफ, पित्त, जीभ। चौथा है वायु। उन तत्वों के निर्माण के लिए जरूरी है जिनकी प्रकृति सुखी, हल्की। ये तत्व शरीर की गति और मूवमेंट से भी जुड़ा है, जैसे गति, नाड़ी, संवेदनशील और तंत्रिका संबंधी गतिविधियां, आंखों का खुलना और आंखों का बंद होना। बाबा ने आत्मा का नॉलेज दिया है, शरीर का तो नॉलेज बनता ही रहता है। आकाश हमारे शरीर में क्या भूमिका, उसकी भूमिका है हल्की और सघन प्रकृति के होते हैं। ये दो अंगों को एक दूसरे से अलग करता है, और उनके बीच खाली स्थान जो निर्माण करता है उसमें रक्त, नलिकाएं, मांसपेशियां। लेकिन पांचों तत्वों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो है वायु। वायु का स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर क्षण श्वास जो हम लेते हैं उसमें वायु का भी भाग है, प्राणवायु। और उसमें भी वायु मीन्स वायुमंडल बनता है, उसे वाइब्रेशन बनता है। तो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नॉलेज में हमें वाइब्रेशन कैसे फैलाना है, वायुमंडल कैसे बनाता है, उसके पांच तत्व तो बहुत बड़ी भूमिका बजाते हैं। अभी प्रकृति के पांच तत्व हमको खींचते हैं, क्योंकि कभी कभी हम घर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो कभी कभी लगता है कि हरियाली, बाग बगीचा हमें बहुत अच्छा लगता है। वहां जाते ही हमको शांति मिल जाती है। दूसरे है पहाड़ों पर जाते हैं, पहाड़ों पर ठंडी ठंडी हवाएं मिलती है, वो भी हमको अच्छा लगता है। सागर, पानी, नदियां भी अच्छी लगती है। तो प्रकृति के पांच तत्व हमें खींचते हैं। प्रकृति के पांच तत्व हमें क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमारा शरीर प्रकृति के बना हुआ है, इसलिए प्रकृति को जो मिलती है तो उसे आनंद आता है। इसलिए कहते हैं कि सुबह में अब जब हम घूमते हैं, नकी लेक पर जाते हैं, तो ज्यादा आनंद आता है, और जो भी अंदर की चिंताएं होती है वो चिंताएं हमें भूल जाते हैं। प्रकृति कहते हैं हमें बिना किसी को कहे सब कुछ देती रहती है, जैसे सूर्य हमको प्रकाश देता है, शक्तियां देता है। तो प्रकृति के पांच तत्व जैसे झाड़ है, वनस्पति है, जो भी है वो हमें शक्तियां देते रहते हैं। दूसरा है प्रकृति को अभी गुस्सा आया है। बाबा ने एक बार कहा था प्रकृति को बहुत गुस्सा आया है, प्रकृति को गुस्सा बहुत आया है, तो प्रकृति क्या क्या करती है। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि अभी बाबा ने बच्चों को पूछा है कि अभी आप संपन्न हो गए हैं, या प्रकृति को मैं दो झाड़ू दे दूं तो झाड़ू दे दूं साफ करने के लिए, बाबा ने पूछा था। तो कहने का मतलब प्रकृति को बहुत गुस्सा आया है। तो गुस्सा किस प्रकार से वो हमें बताते हैं। सबसे पहले उसको गुस्सा आता है तो भूकंप जब आता है तो जैसे लगता है कि अगर सब कांप उठते हैं, जैसे तांडव नृत्य होता है धरती पर, ऐसा लगता है। फिर सागर की उछल जब आती है तो आसपास के गांव को उजाड़ देते हैं, और कहते हैं कि जो ये भूकंप आता है, सुनामी आती है, हरिकेन आता है, आंधी तूफान आता है, तो प्रकृति को गुस्सा आता है कहते हैं, तो गुस्सा वो प्रकट करती है। तभी उसको बचाना कैसा है, बचाने के लिए हमें क्या करना है, तो वो तो हमें प्रैक्टिकल बातें हैं, क्योंकि अभी पानी की तो बहुत ही जरूरत है, और पानी कहते हैं इसका स्तर बहुत ही नीचे जा रहा है, और कई कई गांव में देखा है कि बहुत ही दूर दूर जा करके अपने पानी का प्रबंध करते हैं, कई कई तो बहुत नीचे उतरते हैं और पानी का प्रबंध एक बाल्टी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ भी अभी नदियां भी सूख रही है, कहते हैं कि आगे समय में पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। बाबा ने एक अव्यक्तवाणी में कहा था कि ऐसा समय आएगा जो पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरसेंगे, और एक सोने के रिंग भी देते हुए भी एक ग्लास पानी नहीं मिलेगा। तो मतलब बहुत पानी की वैल्यू है। और आपने देखा होगा पांडव भवन में भी एक बोर्ड लगा हुआ है, और उसमें बताया है कि जो पानी है वो हमको पानी को बचाना है। तो कैसे बचाएंगे, तो सबसे पहले तो सुबह में उठते हैं तो ब्रश करते हैं, तो जब ब्रश करते हैं तो नल खुला ही रखते हैं और ब्रश करते हैं, तो ब्रश करते 5-10 मिनट जो भी होती नल खुला ही रहता है, उसको हम जितना जरूरत है उतना ही यूज करें। दूसरा, जब स्नान करते हैं तभी देखते हैं कि सावर के नीचे स्नान करते हैं तो मालूम ही नहीं रहता है कितना, एक आधा घंटा या तो 10 मिनट 20 मिनट वो सावर चालू ही रखते हैं, उसके बदले हम बाल्टी भर करके ले ले और बाल्टी से अगर थोड़ा सा पानी से एक बाल्टी से स्नान कर लेते हैं तो पानी को हम बचा सकते हैं। तीसरा है कि जब भी पोछा करते हैं घर में या कहीं भी, तो उसमें फिनाइल नहीं डाले, लेकिन पोछा करते समय जो भी वो पानी रहता है उसको गमलों में या तो मतलब कि ऐसी क्यारियों में डालें जिससे मतलब कि उसमें डालने के लिए पानी बच जाए। तीसरा है कि गाड़ियां बहुत हैं यहाँ, गाड़ियों को धोने के लिए वो पाइप का यूज करते हैं, तो इतना पानी वेस्ट करते हैं, उसके बदले में एक बड़ा बाल्टी ले ले और उसमें थोड़ा सा कपड़ा ले ले और उससे अगर साफ करें तो पानी को बचा सकते हैं। तो पानी के लिए हम थोड़ा अगर ध्यान रखें स्नान करते समय, क्योंकि यहाँ पांडव भवन में तो ऐसा होता है कि लोगों को लगता ही नहीं है, क्योंकि हमने माइयों को पूछा कि आप घर में पानी कैसे यूज करते हैं, क्योंकि 2-3 दिन में एक बार पानी आता है, तो उसने कहा तेल जैसे हम यूज करते हैं वैसे पानी को यूज करते हैं। फिर मैंने बोला कि यहाँ कैसे यूज करते, बोले यहाँ तो पानी की कमी ही नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि पानी कहाँ टैंकर कहाँ जाती और कहाँ से आते हैं। तो पानी का मूल्य जब नहीं मिलता है तभी उनको महसूस होता है। तो उसको धरती को कैसे बचाना है, कहते हैं कि धरती को बचाने के लिए जो पेड़ पौधा उगाना है और उसको काटना नहीं है, और घर में अगर घर है तो उसमें एक पौधे रखने हैं, क्यारियां रखनी है, और उसी रीति से हमें उससे थोड़ा तापमान भी ठंडा रहता है और अच्छा लगता है। दूसरा है कि यहाँ जंगल कट रहे हैं, जंगल में झाड़ भी कट रहे हैं, जंगल कम होते जा रहे हैं, तो उससे भी चिंता होती है कि आने वाले समय कैसा होगा। जब दुबई में मतलब कि ऐसे दिखाते हैं कि जो दरिया है उसको सूखा करके बहुत जगह पे मतलब कि टावर बनाया हुआ है, यहाँ बम्बई में भी बाबा कई बार कहते हैं मुरली में कि बम्बई जो पहले थी एक गांव थे और अभी बम्बई में जैसे पानी को सूखा करके बिल्डिंग बना दी है। तो ऐसे इसको बचाने के लिए हमें मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। इस दुनिया में तो बाबा कहते हैं कि 3 चीजें अविनाशी है, सबसे पहले पुरुष, परम पुरुष और प्रकृति। पुरुष माना आत्मा, परम पुरुष माना परमात्मा, और प्रकृति वो अविनाशी है। और हमारा जो रोल है मतलब आत्मा का रोल है, पुरुष का रोल है, तो क्या करना चाहिए कि वो तीनों का जो खेल चलता है उसमें शुरुआत से जो खेल चलता है उसमें आत्मा जो है वो सत्वप्रधान होती है, तो प्रकृति भी सत्वप्रधान होती है। जैसे सतयुग में हमने देखा है कि कैसा है कि हम सभी ने वो और हमारे सभी ने सतयुग तो देखा ही है, सतयुग में हमने अनुभव भी किया है। तो सतयुग संपूर्ण पावन दुनिया है, संपूर्ण प्राप्ति की दुनिया है और प्रकृति से हमको बहुत सुख मिला है और सतो प्रधान प्रकृति के कारण शरीर भी सतो प्रधान है और सतो प्रधान प्रकृति के कारण सुख सुविधा भी बहुत मिली है। तो धीरे धीरे जब हम नीचे उतरते हैं, सीढ़ी में दिखाया है, चक्र में भी दिखाया है कि जैसे हम नीचे उतरते हैं तो सतयुग और त्रेता में तो प्रकृति बहुत ही अच्छी है, प्रकृति पावन है, लेकिन द्वापर युग से थोड़ा थोड़ा उसमें रजो प्रधान, थोड़ा थोड़ा रजो आ जाता है और उसके कारण हमारी बैटरी जो है धीरे धीरे कम होती जाती है। तो धीरे धीरे हमें प्रकृति में भी रजो प्रधानता आती है क्योंकि सारे के सारा आधार है हमारे ऊपर, आत्मा के ऊपर है। आत्मा जैसे जैसे गिरती जाती है वैसे वैसे प्रकृति भी धीरे धीरे उनके रूप हो जाती है। तो प्रकृति के पहले मालिक होते हैं सतयुग में और त्रेता युग में मालिक होते हैं और वो कहती है हमें यूज करो, वो दासी है। लेकिन अभी धीरे धीरे कलयुग के अंतिम समय में प्रकृति मालिक बन गई है और हमें उसके दास बन गए हैं। कैसे? क्योंकि प्रकृति तो सबको एक समान ही देती है लेकिन अभी कलयुग में हम देखते हैं बहुत ही गर्मी लगती है तो क्या करते हैं, प्रकृति ने तो हमें समान ही सब कुछ दिया है लेकिन बहुत जब गर्मी होती है तो जो पैसा वाले होते हैं वो अपने घर में अनेक प्रकार के कूलर लाते हैं, मतलब सब कुछ लाते हैं, एसी लाते हैं, कूलर लाते हैं और अपने को मतलब कि ठंडा महसूस करते हैं लेकिन फिर भी उनमें कुछ न कुछ विटामिन की कमी रह जाती है क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं है इसलिए, और फिर धीरे धीरे वो रोगों के चंबे में आ जाते हैं। यूज करना चाहिए सबको मिलकर के एक ही जगह पे यूज करें, जितना जरूरी उतना ही यूज करें, लेकिन सारे दिन 24 घंटा एसी में ही बैठे रहे और बाहर ही ना निकले तो उसकी बहुत तकलीफें होती है क्योंकि हाँ, क्योंकि हमको ये जो न्यूजीलैंड से बहन आई थी उन्होंने बोला कि हम जब एसी में ही रहते हैं और एसी में नहीं रहते हैं लेकिन हम घर में ही रहते हैं ज़्यादा करके, तो जब हम डॉक्टर के पास गए तो हमको बोला कि D3 कमी है और आपको सूर्य के धूप में बैठना पड़ेगा। तो उस समय गर्मी का टाइम था तो भी वो आधा घंटा बैठते थे, मैंने बोला आधे घंटे सूर्य की इतनी गर्मी, तो बोला कि नहीं हमको बैठना है क्योंकि वहां हमको धूप नहीं मिलती है ना और घरों में रहते हैं तो हमको बहुत तकलीफें होती है। तो ये मतलब कि जैसे एसी में वो जहां रहती थी वहां नहीं था। अभी थोड़ी ये जो बहुत ठंडे देश है ना उसकी बात करते हैं, बहुत मजबूरी है, वो यहाँ आते हैं तो आपने देखा होगा कि वो लोग सूर्य को देख के धूप देख करके बहुत ही उसको बहुत बहुत अच्छा लगता है और यहाँ आने के बाद धूप के सामने मुख करके बैठते हैं जबकि यहाँ वाले हैं ना तो वो पीठ करके बैठते हैं। हमने एक बार पूछा कि इतना धूप है, बोला हमारी जो चमड़ी लाल हो जाएगी तो लोग हमको कहते हैं कि बहुत बहुत अच्छा, मतलब कि आप देखो कितने अच्छे होके आए क्योंकि वहां है विटामिन्स नहीं। तो बाबा ने एक बार बोला था कि गोरे नहीं है लेकिन उसमें क्या है विटामिन्स की कमी है। तो अभी हाँ नहीं, एसी की जरूरत है जितना जरूर एसी यूज करना है लेकिन 24 घंटा तो उसमें नहीं बैठना चाहिए ना, थोड़ा बैठो, 10 मिनट बैठो, 20 मिनट बैठो, 30 मिनट बैठो, लेकिन सारे दिन लोग तो निकलते नहीं है क्योंकि वहाँ टीवी भी चलता है तो मालूम ही नहीं रहता है कि हम एसी में इतने घंटा बैठते हैं। तो इलेक्ट्रिक जो भी हम प्रयोग करते हैं उसका कम प्रयोग करना चाहिए। एक बार हम आंखों की मतलब एक डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर द्वितीया था, वो स्पेशलिस्ट था। तो जब हम उनके पास गए तो उन पूरा ही जो उसका हॉस्पिटल था जो बाहर का था उसमें एसी चलता था और हम जब उनके पास आए तो पंखे भी नहीं चलते थे, पंखे भी थे सब कुछ था। तो हमने बोला ऐसा क्यों, बोला बेन जी जो कुदरती हवा होती है बहुत काम की है, इसलिए हम फैन नहीं चलाते, लेकिन लोगों के लिए हमने लोगों के लिए हमने एसी रखा है, फैन रखा है। तो अब देखो एक बड़ा डॉक्टर भी ऐसा कहता है कि भाई बाहर जो एसी की हवा है, पंखे की हवा बहुत नुकसान करती है, अगर खिड़कियां दरवाजा खुला रखो और वो हवा जो आती है उससे ज्यादा फायदा होता है। अभी इस प्रकार से तत्वों की पालना हम कैसे करें? तत्वों की पालना भी जरूरी है, क्योंकि आखिर तो बाबा ने कहा है कि आप तत्वों की पालना करेंगे तो वो तत्व जब बहुत ही अंतिम समय आएगा और उसका बहुत ही रुद्र स्वरूप होगा, तो बाबा ने एक बार कहा था कि मेरे बच्चों से कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सबको तकलीफ तो होंगी लेकिन उसको महसूस नहीं होंगी, महसूस नहीं होंगी तकलीफें, महसूस नहीं होंगी। महसूस करना बहुत बड़ी बात है। जैसे एक व्यक्ति है उसको थोड़ी ठोकर लग जाती है तो उसको बहुत महसूस होता है, लेकिन बड़ा बड़ा ऑपरेशन होता है, हार्ट का ऑपरेशन होता है तो कोई रोता नहीं है। जिसको बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और बेहोश हो जाता है तो रोता नहीं है। कहने का मतलब है ये जो मतलब कहने का मतलब कि इसलिए कि वो जो भी उसको एनेस्थीसिया देते हैं और जब उसका ऑपरेशन करते हैं तो उसको महसूस नहीं होता है। एक बार क्या हुआ कि हमारे पास चंद्रस दादा आया था तो उनको 99 बहुत ही ब्लॉकेज था, तो हमने उनको बोला कि आपका इतना ब्लॉकेज, आप इतना आनंद में रहते हो। और दूसरे दिन एक भाई जो आए थे जिसको पूरा नॉलेज था कैसे ब्लॉकेज होता है कैसे नहीं, तो वो चिंता में थे और बहुत बड़ा महारथी भाई था और बहुत ही चिंता में थी। तो हमने उनको पूछा कि क्योंकि उस समय हम अहमदाबाद में रहते थे, तो हमने पूछा कि आपको इतनी चिंता क्यों है? बोला बहन जी आपको पता है हमारा 95 ब्लॉकेज है। मैंने बोला अच्छा 95 ब्लॉक, बहुत ब्लॉकेज था, ऑपरेशन कराने के लिए आए थे। और फिर हमने दादा को पूछा दादा आपको, तो कहते क्या है जो भी होगा बाबा के पास बैठे हैं, ऊपर ले जाना है तो ले जाएंगे, कोई बात नहीं है। तो इतना आनंद में रहता था। तो कहने का मतलब है कि वो चंद्रस दादा को इतनी जरा भी चिंता नहीं थी। तो जब भी उसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद भी बाबा ने उसको मतलब कि डॉक्टर ने उसको जो परहेज बताई वो सारी परहेज पूरी करते थे, लेकिन फिर भी वो चिंता नहीं थी। तो तत्वों की पालना हम कैसे करें जिससे हमें अंतिम समय में प्रकृति हमें मदद करे? बाबा ने कहा कि प्रकृति आपकी रचना है और रचना से आज तक हमने बहुत कुछ लिया है, तो उसकी पालना करने का भी समय आ गया है। और पालना करने का समय हमें बाबा ने बताया, कहते हैं कि जन्म जब होता है बच्चों की तो उसकी उसको उसके पहले उसकी बहुत ही तैयारियां करते हैं, लेकिन मरने की तैयारियां कोई नहीं करते हैं कि भाई मुझे जाना है तो किस प्रकार से जाना है, संपूर्ण होकर के जाना है या क्या क्या करना है, वो नहीं मालूम होता है। लेकिन बाबा ने हमको मरने से पहले क्या क्या करना है, उसकी तैयारियां क्या करती है, कैसे जाना है, किसके साथ जाना है, उसकी पूरी तैयारी बाबा हमको करवाते हैं। तभी प्रकृति की जो पालना हमें करनी है वो कैसे करनी है? सबसे पहले प्रकृति जो है वो सारी जितनी भी आंखों से हम दुनिया जो भी देखते हैं वो सारे प्रकृति पांच तत्वों से बना हुआ है। सबसे पहले है कि हम बाबा के पास मतलब कि हम सभी का एक ही घर है, परम धाम हम सभी का घर है और वहां से हम यहाँ आए हैं। और वो जो परम धाम कैसा है, संपूर्ण सत्व प्रधान है, संपूर्ण बहुत ही प्योर है और ओरिजिनल है। उसमें जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां भी ओरिजिनल है और हम उस घर के वासी हैं, बाबा भी उस घर के वासी है, हम दोनों ही बाबा के घर से बाबा से आए। लेकिन हम यहाँ आते हैं, एक ही बार आते हैं और वापिस पूरा 5000 वर्ष के बाद ही जाते हैं। और बाबा एक ही बार आते हैं और हम सबको लेके जाते हैं, हम सब उड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ रहते 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 हमारे अंदर जो मैल भर जाता है वो मैल निकालने के लिए मैल है तो हम ऊपर नहीं जा सकते, तो बाबा को यहाँ नीचे आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? क्योंकि उससे हमारा बहुत प्यार है, इसलिए सबसे पहले हमें वो आत्मा का ज्ञान देता है। और इन आंखों से जो भी देखते हैं बाबा कहते हैं कि अभी तक आपने जो भी यूज किया वो ठीक है, लेकिन अभी अंतिम समय है, अब ये जो भी चीजें हैं ना चकाचौंध करने वाली चीजें हैं वो विनाश होने वाली है। जब भी कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तो उसको बहुत ताकत आ जाती है, हमको लगता है अभी वो वर्ष ठीक हो गया है, लेकिन उसके बाद वो मतलब कि उसका दीप बुझ जाता है। कहीं ऐसा हुआ है कि जैसे लगता है कि सारी बीमारी उसकी खत्म हो गई है, लेकिन लास्ट समय में वो बहुत ही मतलब कि बहुत शक्तियां बताते हैं, लेकिन बुझने वाला दीपक है। ऐसे दुनिया भी जो चकाचौंध दिखाती है, इतनी साइंस की प्रगति सब कुछ दिखाती है, लेकिन वो बाबा कहते माया का पंप है, इस माया के पंप है, इसलिए हमें उससे मतलब बाबा कहते हैं वैराग्य होना चाहिए। तो इस संसार की जो भी चीजें हैं वो विनाशी चीजें हैं और विनाश होने वाली ही है। तो बाबा जब प्रकृति से हम सतयुग से लेकर के आते हैं और सतयुग से लेकर के अब तक हम लेते ही आए हैं, तो अभी हमको उसको कैसे देना है। तो सबसे पहले बाबा ने हमें आत्मिक शक्तियों का सब कुछ ज्ञान दिया है। तो जितना हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, बाबा ने कहा जितना आत्मिक स्थिति में रहते हैं और बाबा को याद करते हैं, तो ऑटोमेटिक की सब पूरी वायुमंडल में शांति शांति का वाइब्रेशन जाता है, उससे बाबा कहते हैं मुझे मदद मिलती है। दूसरा है कि जितनी पवित्रता मतलब कि हम धारण करते हैं, जितनी जितनी पवित्रता हमारे में आएगी उतना उतना ये वायुमंडल वाइब्रेशन तमो प्रधान से धीरे धीरे मतलब कि उसमें चेंजेस आएगी। तो सबसे पहले बाबा से हमको लाइट माइट लेनी है, और लाइट माइट लेकर के पहले किसको देना है, क्योंकि शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है, तो पांच तत्वों का शरीर बना हुआ है, तो बाबा से लाइट और माइट लेकर के सबसे पहले हमारे शरीर को मतलब सकास देनी है, और वो सकास लाइट माइट जो बाबा से मिली है, वो लाइट माइट जो बाबा से हमको मिलती है, उस लाइट माइट से सारे दुनिया को सारे प्रकृति को पांच तत्वों को दूर दूर तक वो शक्तियां फैलानी है, वो सबसे पहली उसकी पालना करनी है। दूसरा है कि तत्व कैसे सत्व प्रधान बनेगा, रोज रोज हम अभ्यास करते रहेंगे, रोज रोज हम आत्मिक स्थिति का भी अभ्यास करते रहेंगे और प्रकृति शरीर को भी सकस देते रहेंगे और प्रकृति के पांच तत्वों को भी सकस देते रहेंगे, तो धीरे धीरे वायुमंडल में चेंजेस आता है। फिर पांच तत्व जो है ना उसको व्यक्तिगत रूप में देखो, व्यक्तिगत मतलब पांच पांच पुतले बनाओ, और पांच पुतले बनाओ और बाबा के पास सूक्ष्म वतन में जाओ और पांच तत्वों को अपने सामने रखो, और अब तक हमने उसे जो भी लिया है, जो भी हम सब हमको प्राप्त हुआ है, उस सब को सामने रखते हुए बाबा के सामने रखते हुए भी उसको मतलब कि शुक्रिया अदा करो कि आपने अब तक हमको जो भी कुछ दिया है उसकी दिल से शुक्रिया अदा करोगे, तो क्या होगा कि वो प्रकृति भी एक तो माँ भी है, माँ से भी बढ़कर है, लेकिन जब माँ भी बच्चा जब बहुत प्यार से रहता है तो बहुत प्यार भी करती है, लेकिन मानता नहीं है, उसका उल्लंघन करता है, तो अपना शक्ति स्वरूप भी दिखा देती है, लेकिन फिर भी माँ तो माँ है। तो जब हम उसके शुक्रिया बनाएंगे दिल से, उसको उसके प्रति मतलब कि थैंक्स देंगे, तो प्रकृति भी हमारी जभी भी बहुत सहयोग देगी। तीसरा है कि प्रकृति से हमें बहुत ही नुकसान भी कर दिया है, और नुकसान किया है तो प्रकृति को बाबा के सामने मैंने बोला कि व्यक्तिगत रूप में रख करके उससे माफी मांगो कि हमने जो भी आप नुकसान हुआ है, हमारे जो भी आपको दुख दर्द हमारे से आपको मिला है, उससे हम आज तक हमने जो भी किया है वो सबसे सब लेकर के आप माफी हम सॉरी करते हैं, माफी मांगते हैं। तो जब भी आप देखो कोई भी व्यक्ति है ना बहुत बड़ी गलती करता है, मानता नहीं है, तो उसके पास गुस्सा आता है, लेकिन व्यक्ति सॉरी कर देता है ना तो सॉरी शब्दों से उसका आधा गुस्सा खत्म होता है। तो प्रकृति भी माँ है ना, तो जब भी हम बच्चे हैं तो जब भी हम उसको मतलब कि माफी मांगते हैं कि हमारे से गलतियां हो गई है, और तो उसको भी वो भी हमको सहयोग देना शुरू करती है। दूसरा है कि हाँ आगे के लिए सुधारना तो है ही, लेकिन जब हमको सॉरी कर देते हैं और आगे के लिए सुधारते हैं तो प्रकृति भी तो हमें मदद करती है, सहयोग देती है। फिर प्रकृति जो है ना वो कोई भी वस्तु हम यूज करते हैं सुबह से लेकर के, जैसे पानी से लेकर के जब भी हम सुबह में उठते हैं सबसे पहले बाबा का शुक्रिया करते हैं, क्योंकि बाबा ने हमको इतना अच्छा जन्म दिया है, बाबा ने हमको अपना बनाया है, बाबा ने हमको ज्ञान दिया है, बाबा ने हमको शक्तियां प्रदान करता है, बाबा हमारा जीवन बहुत ऊंच बनाता है, तो बाबा से सबसे पहले शुक्रिया करते हैं। उसके बाद हम जब पलंग में बैठते हैं, खटिया पर बैठते हैं, तो खटिया पर जिस खटिया भी पांच तत्वों का बना उसको भी उसको भी मतलब शुक्रिया करो। जो हम सुबह में उठते ब्रश करते हैं वो भी पांच तत्वों का बना हुआ है, उसकी शुक्रिया करो। मतलब जो जो हम यूज करते हैं, जो जो चीजें हम यूज करते हैं वो सब की शुक्रिया करो। एक दिन प्रयोग करो, सोफा का भी शुक्रिया, इस सब का शुक्रिया, जो हमको सहयोग दे रही उसका शुक्रिया, जो शांति से सुनती उसका भी शुक्रिया। तो कहने का मतलब कि जब हम शुक्रिया करते हैं तो आने वाली परिस्थितियों में, बाबा ने एक बार कहा था कि जब ही ऐसा समय आएगा तो मेरे बच्चे जो है वो अगर भूकंप यहां तक आया है ना तो आपके पास नहीं आ सकता है। बाबा ने एक बार कहा था कि आप जब योग में रहोगे और प्रकृति को जब आपने बहुत ही मतलब कि सहयोग दिया होगा और बहुत बाबा को याद किया होगा, तो बाबा ने कहा कि जो चोर डाकू लुटेरे आएंगे ना तो जहां खिड़की है ना वहां उसको दरवाजा दिखाई पड़ेगा, दरवाजा वहां खिड़की दिखाई पड़ेगी, जब दरवाजा है ना वहां उसको भीत दिखाई पड़ेगी। तो बाबा ने ये बातें साकार मुरली में और अव्यक्त मुरली में कहा है। साकार मुरली में तो क्योंकि हम नहीं थे, लेकिन अव्यक्त मुरली में तो आया था एक बार थी। तो वहां जो विरमगामी बहनें रहती थी, तो बहनों ने कहा कि दीदी को पूछा था, दीदी सभी ने हमको कहा है कि आप बहनें हो और सारे जो भी है जितने भी लोग हैं तो हम क्या करें, क्योंकि हमको बोला है कि देखो आप अपने पास कुछ भी नहीं रखेंगे और आपके पास कुछ भी होगा तो हम आपको मदद करने वाले नहीं है, इसलिए आप भी रखो। तो उन्होंने बोला कि हम जो रहते हैं पूरा उनका गांव है तो हमको दीदी क्या करना चाहिए। तो दीदी कहती है कि दीदी ने कहा कि मैं दादी को पूछती हूँ। तो उन्होंने टेलीप्रिंटर द्वारा दादी को पूछा, दादी अभी बहुत ही ऐसे, दादी ने बोला कुछ भी नहीं, पवित्रता का मतलब कि आप ऐसा वाइब्रेशन फैलाओ और कोई कुछ लेने की जरूरत, कुछ भी नहीं होगा। बाबा से मतलब कि संदेश मंगवाया था, बहुत ही कैसी चीजें हो गई थी। तो बाबा ने कहा कि संगठन जो है ना उसमें आप एक पवित्रता का वाइब्रेशन और एक मतलब कि एक किला मजबूत करो, याद का किला, जिससे कुछ भी नहीं होगा। और फिर उन्होंने बोला, कुछ भी बोला नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ उन्होंने जो सजेशन दिया बोला हाँ 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 बोला, लेकिन कुछ किया नहीं। लेकिन बाबा ने मतलब इतना अच्छी रीति से उसकी मतलब की मदद की। तो कहने का मतलब कि यहाँ जब ही गांधीनगर में जो अटैक हुआ था स्वामीनारायण मंदिर पर, तो दादी जी ने भी पूछा कि यहाँ सिक्योरिटी की ज्यादा सिक्योरिटी रखे क्या। तो बाबा ने कहा था नहीं, ये जो किला है ना मजबूत किला, याद का किला मजबूत कर दो, तो ये वाइब्रेशन इतना अच्छा है कि मतलब कि कोई भी व्यक्ति उसको तोड़ नहीं सकती है। तो बाबा ने हमको एक किला दिया है, एक पवित्रता का किला है, एक याद का किला है, वो ऐसे किला है कि कोई भी व्यक्ति हमको कुछ भी नहीं कर सकती है। तो बाबा ने कहा कि ये जो हमें ये पांच तत्व जो है उसको भी पावन बनाना है, तो स्थूल है मतलब वो तो इसमें तो जान नहीं है, लेकिन बाबा ने हमें कहा है कि आपको ही कुछ भी करना है, क्योंकि इसलिए हम जो भी करेंगे जितने भी पुरुषार्थ करेंगे तो पुरुषार्थ के साथ साथ क्या होगा कि वो समय जब आएगा तो दुनिया वाले हम पूछते हैं, एक बार 76 में जब भी ऐसा हुआ था ना कि विनाश हो जाएगा 76 में, तभी हमको आसपास वाले पूछते, हम नए नए थे ज्ञान में, तो हमको पूछते थे कि आप तो बच जाओगे और ये तो हम तो मर जाएंगे। तो मैंने बोला कि हाँ ऐसा ही होगा, क्योंकि हम नए नए थे हमको मालूम नहीं था, हमने बोला ऐसा ही होगा क्योंकि भगवान हमको बचा देगा। तो क्या आपका भगवान को बोलो ना हमको भी बचा दे, ऐसे बोलते थे। तो कहने का मतलब हाँ नहीं, हमने बोला कि हमको तो बचाएंगे क्योंकि हम उनको याद करते हैं। तो ये कहते हैं कि आप ऐसा करो, हम रोज कहते थे कि आप थोड़ा सुनो सुनो, सुनते नहीं थे, लेकिन जब ये बहुत भय का वातावरण, तब हमें नाइट ड्यूटी थी उस समय, हम नहीं थे तो नाइट ड्यूटी थी, तो हम बाबा को याद करते थे, तो सब मुझे पूछते थे कि आप हमको सिखाओ ना सिखाओ, मेरे को तो अभी एक में अभी से कुछ नहीं होगा, हम कितने समय से आपको कहते थे मानते नहीं थे, तो इसलिए अभी थोड़ी समय में कुछ नहीं होगा, क्योंकि मालूम ही नहीं है ना उनको कुछ भी। लेकिन वो बोलती आपको तो पता है ना, आप उन बाबा को कह दो ना हमको भी बचा दे, ऐसा बोलते थे। मतलब कहने का उनकी कितनी भावनाएं ऊंची थी, जो भावनाएं उनकी इतनी ऊंची थी, वो भावनाएं अगर हमारे में संपूर्ण रीति से आ जाए तो कितनी मतलब कि हम प्रकृति की पालना कर सकते हैं। नहीं, इसमें ऐसा था कि उनको उस समय उस काइले पर गिरने वाला था तो बहुत डर था, कहाँ गिरेगा क्या होगा, तकलीफें बहुत होती थी। तो बहुत ही वो रात्रि को मुझे लगता है 2 बजे तक ऐसे ही जागे थे, और वो फिर हिंद महासागर में मतलब गिरा था। लेकिन उसी समय लोगों को इतना भय था, जो 76 में होंगे उनको मालूम है, 76 में समझदार होंगे उनको पता है कितना भय था, बहुत ही भय था। तो उसी समय जैसे विनाश हो जाएगा ये सब कुछ बहुत बातें थी। तो कहने का मतलब कि अभी जो भी हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन अभी से हम स्टार्ट करें प्रकृति को, तो इसलिए तो कहने का मतलब कि प्रकृति को पावन कैसे करना है, तो जो भी चीज हमारे सामने आती है, जो भी चीजें, वो सभी को शुक्रिया करते चलो और उसको बचाते भी चलो। तो बाबा कहते हैं कि प्रकृति की पालना करने के लिए जो बाबा ने हमें अब तक बताया है, वाइब्रेशन बहुत बहुत बड़ी बात है। तो जो भी हम एक बार हम सूरज भाई ने एक हमको प्रैक्टिस बताई थी कि आप ऐसा करना कि जब तभी हम है ना नकेले का चक्कर लगाते थे, तो नकेले के चक्कर लगाते थे तो 2 बहनें होती हैं बातें बहुत करती हैं, तो नहीं कोई भी 2 होते हैं तो बात तो निकलती है ना कुछ न कुछ। तो उस समय उसने बोला था कि अभी नकेले का चक्कर लगाओ तो भले आपस में जाते हो लेकिन आप जो भी मिलते हैं उसको वाइब्रेशन दो, किरणें दो। तो हमने सोचा कि अच्छा है, तो हमने ऐसा शुरू किया। तो कभी कभी अंदर बुद्धि है ना तो कहीं और चली जाती थी, पकड़ के लाते थे। ऐसे करते करते चक्कर जब पूरा हुआ तो बहुत ही इतना अनुभव होता था कि इतनी शक्ति भर गई है। तो हमने सोचा कि इतने समय में इतनी शक्ति भर जाती तो रोज रोज हम करें तो कितनी शक्ति भर जाएगी। तो ये प्रकृति की 5 तत्वों की पालना हमें ही करनी है, क्योंकि आने वाले समय में वो प्रकृति को जितना ही हम पालना करेंगे जितना उसको भी बचाएंगे, आने वाले समय में हमें भी वो हमें सहयोग देगी, हमारे दोस्त बन जाएगी, हमारी माँ बन जाएगी। और माँ और दोस्त का काम क्या होता है? सहयोग देना, तो सहयोग देगी। ओम शांति।
सूरज से किरणें जैसे, सागर से लहरें जैसे, सूरज से किरणें जैसे, सागर से लहरें जैसे करते प्यार हैं, फूलों से खुशबू जैसे, ओ बाबा तुमसे ऐसे इस दिल का प्यार है। सूरज से किरणें जैसे, सागर से लहरें जैसे, इस भीड़ भरे संसार में एक पल भी ना रह पाए बिन तेरे प्यार में। तुम बिन क्या जिएंगे इस भीड़ भरे संसार में एक पल भी ना रह पाए बिन तेरे प्यार में। मौसम से हवाएं जैसे, बादल से जल जैसे, मौसम से हवाएं जैसे, बादल से जल जैसे करते प्यार हैं, तारों से अंबर जैसे, ओ बाबा तुमसे ऐसे इस दिल का प्यार है। सूरज सूरज से किरणें जैसे, सागर से लहरें जैसे।